गोकुल ले चले तैना कहिए अवतार। अब जो वसुदेव उस लड़के को लेके चले, स्वामी जी कहते हैं अब इसको विष्णु भगवान नहीं कहना, ये किसकी शक्ति है? गौलोक की है। सो तो नहीं इन इन हद का अखंड लीला है पर, साफ हो गया क्या भी सच रहेगी, वो अब इस हद का नहीं है, कहां का है? अखंड योग माया की शक्ति का है। एक कहीं सब तुम्हें समझने भानने मन की भ्रांत। स्वामी जी कहते हैं ए परम नाम की ब्रह्म सिटियो, ये सिर्फ तुम्हारे बात से सारी बातें खोल रहे हैं, नहीं तो कोई भी इस चीज को बिना तात्म ज्ञान के बिना जागृत बुद्ध के बता ही नहीं सकता कि कृष्ण की त्रिधा लीला कौन सी। बेहद विस्तार है अति बड़ा या ठोर आड़ा कल्पांत। स्वामी जी कहते हैं आप बेहद का जो विस्तार है वो बहुत बड़ा है, ये तो केवल आपको समझाने के वास्ते मैंने थोड़ा सा कह दिया कि ताकि तुम्हारी शर्म से मिट जाए। बस भी कहूं तुम्हें समझाए के तुम भानो धोखा मन, अवतार सो अक्रूर संगे। अब बीच में 11 साल 52 दिन की लीला किसने की? अखंड अक्षर और अक्षर, यहां अवतार खत्म। अब अवतार कौन आया? जो अक्रूर के साथ चला, बताया ना 7 दिन मथुरा और 4 दिन गोकुल, वो जो अवतार है वो गोलोक की शक्ति का है। अब तन वहां किसका है? विष्णु भगवान का। वो कौन विष्णु? जो आज है, आज भी जो वैकुंठ में विष्णु है बैठे वहां पर, वो अवतार अब फिर शुरू हुआ भाई। अब जो अक्रूर लेकर के गया और वो भी 4 दिन लीला करने के बाद गोलोक की शक्ति वापस, बस अवतार ही 16 कला करेगा। अवतार सो अक्रूर संगे जाई ले मथुरा जिन, इनमें भी ये आंकड़ी बिना तातन समझे ना जाए, सो तुम दिल दे समझियो नीके देऊं बताए। समझी कहते हैं इसमें भी आंकड़ी और वो तारतम के बिना कोई खोल सकता नहीं, पर तुम जरा ध्यान के साथ सुनना फिर पढ़ लेना भागवत में, कोई भेद नहीं खोलेंगे क्या करें। वसुदेव जी उसके बाद व्यास जी के पास ज्ञान जहां तक का है, सो तो तेता ही बोलिया जो गया जहां लो, जहां तक किसकी बुद्धि है भाई वही तक की बात तो वर्णन करेगा, जब आगे की शक्ति बुद्धि उसके अंदर है नहीं तो कहां से ला के ज्ञान किसी को बता देता। सो तुम दिल दे समझियो नीके देव बताए, 7-4 दिन भेख लीला, 7 दिन गोकुल और 4 दिन मथुरा, ये भेष धारण किया हुआ था, ये लीला 11 दिन की हुई। खेले ग्वालों संग 7 दिन गोकुल में, दिन 4 मथुरा जंग, धनक भान गज मल मारे तब हुए दिन 4, यानी कंस को मारा और सबको मारा और जरा उसको जाके छुड़ाया, ये 4 दिन की लीला, 4 दिन हो गए। पछाड़ कंस वसुदेव छुड़ाए या दिन थे अवतार, जब कंस को मारा उग्रसेन को टिका दिया, वसुदेव देवकी को बंध से छुड़ाया, तो देवकी ने वहां कहा हे भगवान आपने जन्म से पहले कहा था कि मैं बेटा बन के तुम्हारे घर रहूंगा और अब आप 12 साल के बाद आए हैं भगवान, इस वास्ते हमारे पास रहो। उन्होंने कह दिया अच्छा, अब विष्णु भगवान है उन्हें तो वैदा याद था, तो बस जमुना जी में नहाए बागा, वो भेष जो था वस्त्र मूलर पीला पितंबर मुकुट उतार के नंद जी की झोली में डाल दिया और कहा कि जाओ जाके यशोदा जी को और राधा जी को और गोपियों को कह देना कि कृष्ण आएंगे। फिर उदो को भेजा कि जा अरे मथुरा में वहां गोकुल में गोपियां हैं उनको क्या कहो, योग योग साधना कहां तक ले जाती है, वैकुंठ तक, और गोपियों राधिका जी के पास शक्ति कौन सी थी, गौलोक की, उनका मुंह तोड़ दिया, अरे उद्धव योग जोग हम नहीं, जा कृष्ण का तू योग बतावे वै बसत हम माई, तेरे पास कृष्ण है ही कहा, तेरे पास तो विष्णु भगवान है। ये गोपियां उपदेश देती हैं, बेचारा बड़ा फीका होकर के तब आता है पछाड़। अच्छा अब आई बात हद की, अब हद की बात आ गई, विष्णु भगवान की लीला शुरू हो गई, गौलोक की वो एक अवतार की शक्ति खत्म हो गई। अब आई बात हद की हिसाब चौदह भुवन सब बात इतियाई की कहे अटकलें और वचन कि जब चौदह लोग का अवतार है तो सारी बात यही की होगी आगे की नहीं हो सकती। युद्ध किया जरा सिंध दसों राता युद्ध आए खिनमाए आए जरा सिंध मथुरा घेरी सही तब श्री कृष्ण को चिंता भाई इंदिरा की तरफ शक्ति थी नहीं गौलोक की करते क्या तब याद आया कि मैं विष्णु भगवान हूं तब आयुध अपने मंगा के 16 कलश संपूर्ण इस दिन से हो गए। तब कृष्ण विष्णु मैं भय वैकुंठ में विष्णु तब ना है तब वैकुंठ में विष्णु नहीं थे तो कई सुन के ये भी शक करेंगे तो स्वामी जी कहते वो भी शक तुम्हारा दूर करता हूँ। शिशुपाल ने हजार बुआ का लड़का था बुआ ने वर मांग लिया था उन्हें कहा अच्छा मैं हजार गालियां देता रहेगा तब तक कुछ नहीं कहूंगा पर उसने हजार से जब एक ये सारा कुछ भागवत में लिखा हुआ तुम जानते भी हो एक गाली ऊपर निकाली तो सुदर्शन चक्र छोड़ा उसकी गर्दन कटी तो जीव गया कहां कौन सा मारता तालाबंद आके इसी विष्णु के खड़े हुए के मुख में ये आपने मेरे काल में वो जो सीरियल आया था ना कृष्ण का उसमें भी दिखाया गया महाभारत का उसमें आके शिशुपाल की जो ये दिखाया गया था। तब कृष्ण विष्णु में भय वैकुंठ में विष्णु तब नाए वैकुंठ से जोत फिर आई शिशुपाल किया हमन ने उसका हनन कर दिया जब मुख समाई श्री कृष्ण के यो कह वेद वचन स्वामी जी कहते हैं ये भागवत में महाभारत में सब कुछ लिखा जाके अपने संशय मिटा रहा किया राज मथुरा द्वारका वर्ष 112 वर्ष उसके जाज रुक्मिणी को साथ ले गए माधोपुर में ब्याया और फिर द्वारका जी में जाके 112 वर्ष राज किया और उसके बाद कौरव पांडव का युद्ध रचाया वहां अपनी पहचान का गीता ज्ञान दिया कि मैं भी तुम्हारी तरह से लाखों बार जन्मता और मत सब कुछ बता दिया। प्रभात सब संगार के जाए खोले वैकुंठ द्वार और फिर जिस काम के लिए आए थे परित्राण है साधुना विनाश आए चार दुष्ट सुंदर शाह जी 18 दिन के युद्ध में 70 लाख आदमी पानीपत के मैदान में मारे गए। वो युद्ध कोई महाभारत का छोटा सा नहीं था बड़ो महाभारत 18 दिन से युद्ध हुआ था और 70 लाख आदमी का हनन करके जिनके हनन के लिए आए थे फिर कहां से धारे वैकुंठ में धारे। गोपुता दिन एते बड़ी बुद्ध का अवतार 23 का अवतार तो लोग वर्णन करेंगे 24 अवतार जो बड़ी बुद्ध अवतार जिसको कहते हैं वो आज दिन तक कोई जानता नहीं था। अब स्वामी जी कहते हैं उसका भी वर्णन करूं बुद्ध अवतार कौन है सतगुरु श्री धनी देवचंद जी महाराज और नेक लंका अवतार कौन है श्री प्राणनाथ जी महाराज ज्ञान के साथ क्योंकि उनके पास जागृत बुद्ध थी इसलिए बुद्ध अवतार हुए और स्वामी जी निज बुद्ध लेके आए तो फिर किसी प्रकार का संशय नेक लंका मतलब क्या है जिनके ज्ञान में किसी प्रकार की कमी किसी प्रकार का संशय बाकी ना रहे वो क्या हो गया नेक लंका। नेक भैया की कहूं एहोसी बड़ो विस्तार समझ के ये भी थोड़ी सी बात मैं आपको कह के समझाता हूं ये तो बहुत बड़ा विस्तार होगा सारी दुनिया इसको अच्छी तरह से समझ जाएगी। अब आए कोई काल बुद्ध नेक भैया की कहूं एहोसी बड़ो विस्तार कोई काल बुद्ध रास की लई ध्यान में सकल अब आए 20 अब आए बसी मेरे उद्र वृद्ध भई पल पल ध्यान के साथ कि वो बुद्ध अवतार ने क्या किया कोई के दिन ब्रिज और रास की लीला को किया फिर जब सतगुरु श्री धनी देवचंद जी का शरीर छूट गया तो अब इंद्रावती कह रही है कि वो शक्ति किसके तन में आ गई वो मेरे तन में आके प्रवेश कर गई। दोबारा सुनिए कोई काल बुद्ध रास की के कोई दिनों तक जागृत बुद्ध ने अखंड रास और अखंड ब्रज की लीला की क्योंकि उसको कोई भी दुनिया वाले जानते नहीं थे इस वास्ते ब्रह्म सृष्टि के संशय मिटाने के वास्ते, और उनको ये यकीन आ जाए कि हमने खेल मांगा था और हम पहले ब्रिज में और रास में आए थे, हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई थी, इसलिए स्वामी जी कहते हैं उससे इतना ही काम लेना था। जब ये काम पूरा हो गया तो फिर वो शक्ति दोनों आकर के मेरे तन में प्रवेश किया। अब आए बसे मेरे उद्र, मेरे हृदय में आके बैठ गए, और वेद भई पल पल। अब उस जागृत बुद्ध को जब परम धाम का तारतम निज बुद्ध वाला मिला तो उसको और भी शक्ति बढ़ती चली गई। अब जो उस समय मांगती थी कि मेरे से जागनी कराओ, मुझे परम धाम की वाहिदत के सब सुख बताओ, जब वो मेरे तन में आके बैठी तो उसको भी ये सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। अंग मेरे संग पाई मैं दिया तारतम बल। अब सुंदर सा जी ये समझने की बात है कि जब वो मेरे अंग आई तो मैंने उसको तारतम का बल दिया। कौन सा तारतम का बल? जब पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अतीत का स्वरूप का तारतम बल मेरे पास आया। पहले भी तारतम था लेकिन वो कहां तक का था? केवल योग माया की अखंड लीला तक था। तभी वो चपाई भी आई है, सुंदर भाई देखा दिल के दीदो माए, ब्रिज रास और धाम की पर जागनी की शुद्ध माए। अब जब निज बुद्ध आ गई तो जागृत बुद्ध के साथ निज बुद्ध आने से परम धाम पचीसों बक्ष रंग माहौल खिलवत खाना और जागनी का पूरा काम ये निज बुद्ध से आया। कहते फिर ये जो तारतम अध्ययन के साथ उसको भी समझ लो कि सुंदर साहब जी ये किताबें जो आपको बता रहा हूं उसके बाद ये तीन किताबों तक यही तारतम चला। वो तीन किताबें उतरी ना कहां हफ्से में, वहां तक नीलाम श्री कृष्ण जी ही रहा। और उसके बाद जो दो छपियां उतरी कलश गुजराती की, उसके बाद वो कलश गुजराती सूरत तक में आकर पूरी हो गई कलश। उसके बाद फिर प्रचार के लिए जब बाहर निकले तो मेरता पहुंचे। मेरते में जो शक्ति पहले उतरी नहीं थी राज्य महाराज की, कौन सी? अक्षर की आत्म और हुक्म का स्वरूप, वो अंदर बैठ गया। जब वो अंदर बैठा और राज्य महाराज की निज बुद्ध आई तब फिर क्या कहा? बड़ी बड़ाई दई आप। अब वो पांचों शक्तियां जब अंदर आ गई तो तारतम का कुछ बदला बदला नहीं है। पहले तारतम जब देवचंद जी सुनाते थे वो तीनों तारतम छपे हुए हैं यहां भी हर स्वरूप के अंदर। मैं पहले बता चुका हूं फिर भी बता देता हूं ताकि संशय मिट जाए। उस तारतम में क्या आता है? देवचंद जी सत्य। अब जब उनका शरीर हट गया तो देवचंद जी को सत्य कैसे थे, क्योंकि शरीर तो सत्य होता है। तो वहां क्या ले आया? श्यामा जी वरसत्य है। अब मेरते तक स्वामी जी भी वही तारतम देते थे, कोई और तारतम नहीं था। लेकिन जब अक्षर की आत्म और राज्य मराय का हुक्म का स्वरूप अंदर बैठ गया और क्या बन गए? पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद बन गए। तो जब पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत तो होंगे तो वहां नाम तत्व गुण फिर लगेगा नहीं, केवल एक नाम बदला और कुछ नहीं, बाकी सारी जवैया सारे शब्द ज्यों के त्यों है। और उससे फिर बात भी जाहिर हो जाती है कि सो तो अब अनादि अक्षरातीत तो जाहिर हुए, श्री कृष्ण तो 5,000 साल से पहले गीता भागवत में जाहिर थे, तब ये बात जाहिर तो हुई। लेकिन आगे आ गया पुराण की उलझन, फिर आ गया किसका उलझन? हरिद्वार का उलझन। अब निपटे आगे वाणी उतरे तो तभी बात खुले। तो फिर जब दिल्ली से बोलो अनूप शाह गए तो रास्ते में आपको पता है कि शरीर को इतनी चोट लगी, क्योंकि गोवर्धन दास और लाल दास के आपस में जब खटपट हो गई तो राइट हैंड थे दोनों, जिनके विश्वास पर स्वामी जी वाणी जागने क्या करने चल रहे थे, और लालदास जी ने जब आके कह दिया, वो स्वामी जी हमारे जैसे नीच दुष्टों को विश्वास में लेकर के आप जागनी ना करने जाना, हमारा विश्वास केवल आपके सामने है, चटाई पर आप हमारे प्राण नाथ हैं, और बाद में हम ही कहते हैं यार इनसे क्या बात करोगे, ये तो हमको मरवा डाले। बस फिर स्वामी जी आखिर शरीर यहां का है सुंदर सा जी, जितना स्वामी जी को गुस्सा आया शायद और मामूली इंसान आज सह नहीं सकता, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि लूज मोशन ऐसे शुरू हो गए कि बस लाल भाई या लाल दाजी साथ है, कपड़ा बदले के निकाले, कपड़ा बदले के निकाले। अंत में ये हालत हो गई कि शरीर छूट गए। तब लाल भाई रोती है चरण पकड़ के, बस अब फिर कौन बैठा, आगे तो शक्तियां बैठी थी। अब ध्यान के साथ इन बातों रोज रोज नहीं कोई समझेगा ना, बात बीते के खुलती है, फिर उस समय टाइम होता है थोड़ा, क्या क्या चीज आदमी खोलने बैठेगा और चुपई वहीं की मेरे जाती। यहां खुद राजी महाराज की अपनी शक्ति ने इस तन में, इसलिए अब जो सनंद ग्रंथ उतरेगी वो ना महामती के नाम से उतरेगी ना इंद्रावती के नाम से, वो सिक्का गवर्नमेंट का जैसे लगता है, गवर्नमेंट स्तंभ। और कोई वाणी इधर उधर हो जाएगी लेकिन सनंद का एक शब्द भी, बोलो बोलो, क्योंकि राज्य महाराज ने अपने हुक्म से मोहर लगा करके लिखा। और फिर अनूप शहर पहुंचे और वहां अब टीका हुआ, किसका, प्रकाश गुजराती और कलश गुजराती। तो अब वहां से तारतम्य शुरू हुआ, निज नाम श्री जी। अब चलते चलते अब एकदम जब भैया समझ में नहीं आता तो एकदम नहीं चलता, कोई ने राम श्री जी कृष्ण जी ही कहता रहा और कोई ने राम श्री जी सहब जी कहता रहा। स्वामी जी ने जो अपनी पद्धति चला दी कि ये तो अखंड रहेगी, आज भी संध्या आरती में जब हम स्वरूप पढ़ते हैं सारे मंदिरों में देश के अंदर तो क्या कहते हैं, श्री जी साहब जी में, इसके बाद भी जिसके कोई शब्द ना मिटे। फिर वहां से जितना स्वरूप साफ हुआ वो असल, आज भी पन्ना जी कभी चले जाओ तो दोनों गुम्मट साहब में और बंगला साहब, और भी काफी स्वरूप साहब है पर चांदी वाले जिन पर मजलस होती है, एकांत में पुजारी जी से कह के, क्योंकि शायद आप ओपन पुजारियों को भी बैन लगा दिया गया है क्योंकि ये बात को जाहिर हो गया कि वो यहां से आके देख गए हैं और उसी को जाहिर कर रहे हैं। अब वो जो भी उनका हो उसमें मुझे दखल देने का कोई मतलब नहीं, मेरा अधिकार है। एकांत में चांदी वाली जगह जिस पर गुम्मट साहब में चर्चा होती है और बंगला जी में चर्चा होती है, हिंदुस्तानी टीका से लेके क्यामत नामे तक पढ़ लेना, निनाम शिर जी साहेब जी है, हमने आंखों से 400 सुंदर साथ ने देखा, शहर नारंग साहब हमारे साथ थे और उसके बाद ये स्वरूप साहब छपवाने से पहले हमने लिख दिया है कि श्री पद्मावती पुरी धाम के गुम्मट साहब और बंगला साहब के मजलस वाले स्वरूप साहब के आधार पर हम छपवा रहे हैं। सुंदर साहब जी कोई जिसकी मर्जी इच्छा आए, कोई जरूरी नहीं मैं कह रहा तुमने नाम से जी साहब जी कहो, समझा देना मेरा फर्ज है, तुमने नाम श्री कृष्ण जी को, मेरे नाम श्री राम जी को, मेरे मुख से कभी एतराज आ जाए तो लानत भेज देना, क्योंकि जो लो आत्म ना देवे सा, किसी के समझाने से क्या होगा। अब अपनी आत्मा से पूछ कर अंदर के यकीन से चलो, जो तुम्हारी आत्मा कहती वो करो। समझाया इसलिए है कि अब आगे सनंद का ग्रंथ आने वाला है और उस पर पढ़ के भी देखना, नहीं तो हर एक वाणी में इंद्रावती और महामती है ना, इसमें नहीं है। इसमें बस जैसे सनन गवर्नमेंट की मोर बस टन, ये सत्य होगा। फिर उसमें वो विकरण भी आपको समझाएंगे कि महापरले में क्या क्या होने वाला है और उसके बाद कब होने वाला है, ये छोटी पाती और बड़ी पाती में सनंद के ग्रंथ में है और किसी किताब में ये चीजें नहीं है, क्योंकि सनंद है खुद श्री राजी महाराज ने इस भेद को जाहिर किया है। बस अब दो चार छोड़िया और लो और फिर इसको खत्म करते हैं। भाई की दया कृपा कितनी है उसका इंद्रावती जी वर्णन करते हैं कि सुंदर साथी जी जैसे कोई दरिया में डूब जाता है, हम इस काबिल ही नहीं थे कि राजी महाराज हमारे ऊपर इतनी कृपा दया करते। अब उनकी दया और कृपा हमारे पर क्या है, वो तो एक सागर के समान है, एक बूंद का भी हम वर्णन करना चाहें तो उन्होंने कहा है, सिंधी भाषा में कभी भजन बनाया था अपने सतगुरु महाराज जी के लिए कि हे राजजी महाराज, आपने एक देह तो लगानी थी लेकिन ऊपर जो धड़ लगाई है ना, ये एक गलत लगा दी, करोड़ धड़ लगाते और एक एक धड़ के ऊपर करोड़ करोड़ मेरी गर्दनें लगा देते और एक गर्दन के ऊपर करोड़ करोड़ मेरे मुख लगा देते, एक एक मुंह के अंदर मेरी करोड़ करोड़ जिभ्याएं लगा देते, इतनी जबानों के साथ मैं करोड़ों बार भी तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता, हित्रा मिट्टी तुहे जा ते पुज्जी ते ना सगन। हम इतना करने पर भी एक एहसान का बदला नहीं चुका सकते कि इस नरक भरे संसार में से जिनमें से आज दिन तक कोई निकला नहीं, अपनी अंगना जान करके आपने हमको चरणों में ले लिया और परम धाम का ज्ञान देकर हमारी आत्म को जगाकर यहीं से हमें सब कुछ सिखाया, ये दया का प्रकरण है। और उसके सुंदर शास्त्री जी, और हांसी तो परम धाम में हर वक्त होती रहती है, पर ये हांसी इतनी बड़ी होगी कि जो सही नहीं जाएगी, क्योंकि सपने के अंदर राज्य ने वाणी दे के हमको जगा दिया कि नहीं, और जागने पर भी यदि अमल हम ना करें तो बोलो कितनी बड़ी हांसी हो। स्वामी कहते हैं, और हांसी सब सहेली पर ए हांसी सही ना जाए। उसके बाद जागनी का प्रकरण है, वो आपको समझा ही चुका हूं कि जागनी कहते किसको है। भागवत का सार क्या बताया था, बस हो गया सब। भागवत का सार रास, और रास का सार तारतम, और तारतम का सार जागनी, और जागनी का सार श्री राज जी के स्वरूप की और अपनी आत्म की। कितनी बार बताया, अब बार बार इसी को चलते रहेंगे तो फिर आगे कैसे सुंदर साजी चल सकेंगे। आगे है जागनी का प्रकरण, और उसके बाद निज बुद्ध भैली नूर में आप अपनी शक्ति का स्वरूप दे रहे हैं कि ये शक्ति मेरे अंदर क्यों आई, कि जब निज बुद्ध अक्षर के साथ मिली तो सारे भेद खुले। उसका प्रकरण है, उसके बाद फिर सनंद है, बस वो कल से शुरू करेंगे अध्ययन के साथ। चौपाई दुराइए क्योंकि समय हो गया, 5 मिनट रह गए थे। पहली चुपाई है उसको ही समझाने के लिए 15 मिनट चाहिए, फिर कैसे करेंगे। मैं बंद ही कर रहा हूं जी, ही सारे स्वरूप साहब में से समझने वाला ग्रंथ है। 4 दिन में कोशिश करूंगा राज्य महाराज बल शक्ति दे के ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों का सार आपके सामने में रख दूं। सात के सुख कारण राज्य कह रहे हैं, इंद्रावती को मैं कहा ताथे मुख इंद्रावती के, कलश सबन का भया, कलश सबन का भया का मतलब कि जो दुनिया निराकार से आगे जाती नहीं थी तो वो निराकार से निराकार के पार, तिन पार के भी पार और खिलवत खाने तक वास्ते साथ के कारण है। कलश सबन का भया, कलश बोलो श्री प्राणनाथ। चलो भाई।